अच्छा आगे अब घर की प्राइवेट लाइफ से मुतल्लिक कुछ बातें हैं कि किस तरह हमें एटिकेट सिखाए गए हैं, कैसे हमने जब कोई हमें बुलाए किसी के घर जाना है तो क्या हमारी तमीज़ होनी चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए, और इन आयात से जो ये अगली आ रही हैं आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितनी ऐसी छोटी छोटी बातों का भी नोटिस लिया और हमें सिखाई हैं। जैसे माँ बाप भी बच्चों को छोटी छोटी बातें भी सिखाते ना, बेटे ऐसे तमीज़ से बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। अल्लाह ताला ने ऐसी हर चीज़ को जिससे कि दूसरे को कोई अज़ियत पहुंच सकती हो, अल्लाह ताला ने उसका नोटिस लेकर और कुरान करीम में हमें सिखाया कि किस तरह हमने जब ये मामलात करने एक दूसरे के साथ, किसी घर मेहमान बनना है तो कैसे बनना है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बात हो रही है, लेकिन इससे बाकी तमाम लोगों को भी सिखाया जा रहा है कि वो किसी भी मुसलमान के घर पे जाएं तो फिर कैसा उनका मामला होना चाहिए। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इस आयत का बता दूं। बुखारी शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब बिनते जहश से, आप जिनकी बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हजरत ज़ैद के साथ उनका निकाह हुआ था और फिर तलाक दे के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ अल्लाह ताला ने आसमानों पे निकाह कर दिया था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ निकाह हुआ तो लोगों की दावत की, यानी वलीमे की दावत। इससे हमें पता चलता है कि वलीमा करना सुन्नत से साबित है। हाँ, वलीमे की टाइमिंग में कुछ इख्तलाफ है। बस कुछ उलमा कहते हैं कि निकाह जिस वक़्त मुकर्रर हो उस वक़्त ही कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये बात है जो सुन्नत से साबित है कि जिस वक़्त यानी रुख्सती हो जाए उस वक़्त वलीमा किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैनब से निकाह किया था तो लोगों की दावत की, वो खा पी के बातों में बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने की तैयारी भी की, फिर भी वो ना उठे। यानी जैसे होता है कि बंदा कभी उठना करता भी है फिर भी मेहमान बैठे रहते हैं, ये देखकर आप खड़े हो गए। आपके साथ ही कुछ लोग तो उठ के चल दिए, लेकिन फिर भी तीन आदमी ऐसे थे कि बैठे ही रह गए और बातें करते रहे। फिर हुआ ये, हजरत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर पे गए और वहां से चक्कर लगा के भी आ गए। जैसे हज़रत आयशा के बारे में आता, उनके पास गए, उनको उनके पास कुछ टाइम बैठे, वापस भी आ गए, तब भी वो लोग वहीं बैठे हुए थे। यानी कितनी एक अज़ियत की बात है। तो जब ये लोग चले गए तो हजरत अनस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, फिर आप घर तशरीफ लाए। और उस वक्त हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने भी जाना चाहा, यानी आपके घर में, तो आपने अपने और मेरे दरमियान पर्दा कर लिया और ये आयत उतरी थी उस वक्त। और रिवायत में ये भी आता है, इस मौके पर गोश्त और रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाई थी और हजरत अनस को भेजा था कि लोगों को बुला लें। लोग आते थे, खाते थे और वापस जाते थे। जब एक भी ऐसा नहीं बचा जिसे हज़रत अनस बुलाते तो आपको खबर दिया, आपने फरमाया आप दस्तरखान बढ़ा दो, यानी उठा लो। लोग सब चले गए लेकिन तीन आदमी बातों में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलकर हज़रत आयशा के पास गए, फरमाया अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उन्होंने जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी नई बीवी कैसी हैं, खुश तो हैं? आपने फरमाया अल्लाह तुम्हें बरकत दे। इस तरह आप अपनी तमाम अजवाज मुतहरात के पास गए और सब जगह यही बातें हुई। अब लौट कर जो आए तो देखा वो तीनों साहब अभी तक गए नहीं थे, लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी हया थी, मुरव्वत बहुत ज्यादा थी, इसलिए आपने कुछ नहीं फरमाया। फिर हज़रत आयशा के हुजरे की तरफ चले। अब फिर उसके बाद किसी ने आके खबर दी कि वो लोग चले गए हैं, तो फिर आप आए और उस वक्त आपने चौखट में कदम रखा ही था कि ये आयत नाज़िल हुई। क्या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना तुम दाखिल हो घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ना दाखिल हो। मतलब क्या, ये नहीं कि कभी जाना ही नहीं है, मगर किस तरह से बताया गया, इल्ला अन यूज़ना लकुम इला तुआम, चूंकि ये एक खास सिचुएशन के मौके पर नाजिल हुई है ये आयत, इसलिए इस में बताया गया कि जब तक कि इजाजत ना दी जाए तुम्हारे लिए खाने की तरफ, जब तक आपको इजाजत ना दी जाए, यानी जब तक कि आपको खाने के लिए इनवाइट ना किया जाए, ऐसे ही खाने के लिए नहीं चले जाना। जैसे उस जमाने में बाज दफा ऐसे होता था कि लोग कहीं जाते थे किसी के घर, अब खाने का टाइम हो गया तो खाने के टाइम पे चले गए, या फिर ये भी होता था कि खाने का टाइम होने लगा तो बैठ ही गए, बैठे भी इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब खाना लग ही जाता है तो फिर ही खाना खा के ही अब जाएंगे। तो ऐसा नहीं, आपको जब इजाजत दी जाए, हमने सूरह नूर में पढ़ा था ना आयते इस्तेजान, कि जब इजाजत हो तब जाओ किसी के घर में, इजाजत लेकर जाओ। ऐसे ही नहीं कि आ धमके जी हम सरप्राइज दे रहे थे आपको, हम ये सरप्राइज भी आपके लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है घर वाले उस वक्त किसी ऐसे काम में मशगूल हैं, कुछ इस तरह से हैं कि वो आपको इस वक्त एंटरटेन नहीं कर सकते, या अभी उनकी कोई तैयारी नहीं है आपके लिए, अब इस वक्त उनको आपका आना कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इजाजत पहले लो, चाहे दूर से आ रहे हैं चाहे करीब, इजाजत लो फिर उसके बाद जाओ। ये देखें, ये दावत के और मेहमानी के जो असूल इस आयत में दिए गए ना, ये सारे मुसलमानों के लिए, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के लिए नहीं है, आपके तो घर के लिए यहाँ पे फरमा दिया गया, सब सब के लिए एक नमूना है। एक तो बगैर इजाजत के ना जाओ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, गैरा नादिरीना इना हो, ना इंतजार करने वाले हो इसके पकने का, ताम के पकने का इंतजार ना करो, है ना। आप यानी पहले से इतनी जाके बैठ ना जाओ कि आप जाके बैठ गए, आप अगर दावत पे भी बुलाया हुआ, अगर नहीं दावत पे बुलाया हुआ तब तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं, कि लग रहा अभी खाना कुछ बन रहा है किचन में, कुछ बर्तन वर्तन की बजने की आवाज आ रही है तो खाना लग रहा लगने ही वाला है लगता है, तो फिर थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, खाना खा के ही जाएंगे, इस तरह से चीज नहीं। अगर आपको दावत पे भी बुलाया गया तब भी ऐसे ना करो कि पहले से जाके बैठ जाओ उनके घर पे, वो बेचारे जाहिर है जब दावत उन्होंने की होगी घर में तो उसका इंतजाम कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो फारिग बैठे होंगे। अब आप उन्होंने इंतजाम भी करना है, फिर वो कोई तैयार भी होंगे, अब आपको अगर मिसाल के तौर पे 5 बजे बुलाया तो आप 4:30 ही उनकी बेल कर रहे हैं, कि हमने सोचा हम जरा जल्दी चले जाते हैं, हमने सोचा हम आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपने हेल्प भी करनी है ना तो आप इजाजत लेकर जाइए, देखिए हम चाह रहे हैं कि आपकी हेल्प करें, उसके लिए क्या हम आधा घंटा पहले आ जाएं? अगर तो वो आपको इजाजत देता है तो तब जाएं शौक से, अगर नहीं देता तो फिर आप मत इस तरह से जाके उनको सर पे सवार हो जाएं पहले से, ठीक है। तो ये एटिकेट्स हमें सीखने हैं। फिर और क्या एटिकेट बताया, वलाकिन इजा दुआई तुम, लेकिन जब बुलाए जाओ तुम यानी दावत के लिए, फदखुलू तो दाखिल हो जाओ, फइजा ताइम तुम फंतशिरू, फिर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, यानी जाओ अपने अपने घरों को। वला मुस्तानिसीन लिहदीस, तो ना मशगूल होने वाले बनो बातों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको बुलाए और एक तो पहले से चले गए, उसके बाद भी खाना खा के उठने का नाम नहीं ले रहे। अब दूसरे बंदे ने हो सकता है कि अपना जो किचन समेटना हो, उसने हो सकता है आराम करना हो, वो थक गया हो इतना इंतजाम करने के बाद, और लोग हैं कि वो बातों में लगे हुए और कहते हैं हम तो बहुत लेट सोते हैं इसलिए लिहाजा अब हम बैठे ही रहेंगे, वो गपशप उनकी शुरू हो गई है, आप गपशप खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो देर तक बैठे रहना मेजबान के लिए बाय से तकलीफ हो सकता है, इसलिए मना किया गया कि आप आए हो, खाना खाया उसके बाद आप जाओ। हाँ ये अलग बात है कि मिसाल के तौर पे किसी ने ऐसे ही बुलाया, मसलन किसी मीटिंग के लिए बुलाया किसी उसके लिए, अब आपने खाना खाया उसके बाद अब डिस्कशन होगी मीटिंग पे या कोई और बातें होंगी, तो वो उसकी इजाजत है फिर। लेकिन या आपको वो जबरदस्ती बिठा रहा है मिसलन है कि वो कोई औरत है वो कह रही है अभी तो मैं फारे होके मैं भी बैठी हूँ, उस वक्त से तो मैं किचन में लगी हुई, तो अब आप मेरे पास तो थोड़ी देर बैठे, फिर आप थोड़ी देर बैठ गए, इस तरह की बात हो तो अलग बात है, लेकिन खुद भी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं मेरे बैठने से इनको अजियत ना हो रही हो। अपना ही नहीं सिर्फ देखना चाहिए कि हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, अब ये अब एक के बाद एक दौर चल रहा है, अब ऐसे भी एक खाना भी खा लिया, अब दूसरा भी हो गया, दोपहर को किसी ने बुलाया हुआ, खास तौर पे दोपहर को बुलाने वालों का, तब बेचारे कुछ लोग तो मेरे ख्याल तंग आके वो कहते हैं रात को देर से ही बुलाओ ताकि जल्दी तो जाए, अगर बुला लिया 6-7 बजे तो इन्होंने तो 10-11 से पहले तो जाना नहीं, इसलिए बेहतर है कि 8 बजे बुलाओ ताकि 11 तक तो चले जाए। तो वो फिर जाहिर है फिर लोग अवॉइड करने लगते हैं। तो ये नहीं है कि दोपहर को किसी ने बुलाया, 1 बजे बुलाया, रात के 6-5-6 बज गए और आप बैठे ही हुए हैं। अब दूसरा बंदा फिर आप शाम की चाय का इंतजाम कर रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो उठ रहा है, फिर वो काम कर, ये अब लोगों को सोचना चाहिए जो मेहमान है कि वो ऐसा मामला ना करें कि दूसरे की अजियत का बाइस बन जाए। क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि उसको जब अजियत होगी तो उसके दिल के अंदर तंगी पैदा होगी इन मेहमानों की तरफ से, वो उसको अच्छा महसूस नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं चाहे, लेकिन जब लोग इनको इग्नोर करते हैं तो आपस की रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए इन चीजों तक को एड्रेस किया है कि देखें आपकी वजह से अगर मेजबान को तकलीफ पहुंच रही है, वो नहीं भी कुछ कहता मुरव्वत में, तो फिर भी बाद में तो वो 100 दफा तौबा करेगा बुलाने से पहले, वो कतराएगा आपसे, दोबारा नहीं बुलाएगा, और उसके दिल में एक तंगी तो पैदा हो जाएगी ना आपके लिए। और अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि आपस में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए रंजिशें हों। तो इसलिए जब किसी ने बुलाया हो तो उसकी रायत करो, उसको इसको ऐसे ना करो कि जिससे वो उसको तंगी हो जाए, उसको तकलीफ पहुंचे, ये काम ना करो। इसी वजह से इस तक बात को, यानी इस बात तक को यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप खाना खा चुके तो अब आप जाएं। अब खाना, ये इस चीज को ना समझे कि अब इसके घर में तो हम घुस गए हैं, अब निकाल तो ये सकता नहीं है, अब आ तो गए, अब हम भी पूरा पूरा फायदा उठा के ही जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए। देखें कहने को हमसे ये सोचते हैं कि आज हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जमाने में हैं और हम बड़े बहुत मैनर्ड हैं, बड़े कल्चर्ड हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इन बेसिक मैनर्स का भी अक्सर ख्याल नहीं रखा जाता। हम कहते हैं हम 5 मिनट के लिए आपका टाइम चाहते हैं, चाहे वो फोन पे बात हो, चाहे वो घर पे किसी के जाना हो, वो 5 मिनट 50 मिनट से कम नहीं होते। बस मैंने 5 मिनट की बात करनी, बस मैंने 2 मिनट की बात करनी, वो 2 मिनट जो होते हैं वो 20 मिनट होते हैं, जो 5 मिनट होते हैं वो 50 मिनट होते हैं। अब कितनी आपने दूसरे को अजियत दी। तो घरेलू माशरत के आदाब सिखाए जा रहे हैं, दूसरों के घरों में इजाजत लेकर दाखिल हो, पहले आप पूछ लें, और फिर अगर आपने 5 मिनट का कहा तो फिर 5 मिनट ही लेना, ये नहीं है कि फिर अब आप बस घर में चले गए तो अब उठने का नाम नहीं लेना। और फिर वहां पे ये ना इंतजार करें कि दूसरा अब खाना पक रहा है तो अब खा के जाए। देखिए बाज दफा ऐसा होता है कि कोई औरतें हैं, आप उनके घर पे गए हैं, चलो चाहे इजाजत लेके ही गए थे, अब टाइम हो गया, उनके हस्बैंड आ गए हैं, वो हस्बैंड को खाना दे रही हैं, कुछ है, चाहे आपने नहीं भी खाना और आपको कोई मसला नहीं है, आप कोई खाने के लालच में नहीं बैठे हुए, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि घर वाली उसमें बिजी है, क्या ये तकलीफ देना नहीं है कि वो एक परेशान है कि मैं इसको भी टाइम दूं, उसने हस्बैंड को खाना भी देना और हम वहीं बैठे हैं, अब हम उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वो कह रहे हैं हाँ जी आप भी खाना खा लें, अब हम ना नहीं नहीं हमने तो नहीं खाना खाना, हम तो खा के आए, अच्छा लेकिन बैठे हमने रहना, तो आप जाएं। ऐसे ऐसी तरीके, यानी ये अहकामात किस चीज के बारे में है कि एक के रवैये से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, ये मैसेज है इनमें। जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेम चीजों के मैं देर तक नहीं बैठती हूँ, आप इसके गिर्द इर्द गिर्द होने वाली आप असल जिस्ट को समझे, क्या है जिस्ट, इस आयत की जिस्ट क्या है, इसका खुलासा क्या है, इसका निचोड़ क्या है, कि दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखो, किसी को अपनी वजह से अजियत मत दो, ठीक है, किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। किसी के घर खाने खाने का मतलब ये नहीं कि धरना ही मार के बैठ जाओ, अगर कोई दावत में बुला के भूल ही गया है तो अब आप उसके घर से रुखसत ही ना हो, तो बुलाया ना हो खाने पे तो ऐन खाने के टाइम पे भी ना आ धमके कि उनके घर पहुंच गए, ये भी बदअखलाकी की बात है। वो पता है कि ये खाने का टाइम है दूसरों का, तो अब आप वहां पे खड़े, अच्छा अब आपने बाहर से ही आपको पता चल गया है कि अंदर लोग खाना खा रहे हैं, तो मत अब जाए उनके घर के अंदर, और उन्होंने दरवाजा खोल ही दिया आपके लिए गलती से, तो इंसान वहीं से वापस चला जाए कोई बात कह के, ये नहीं कि मैं अंदर जाके बैठती हूँ, नहीं मैं खाना तो मैंने नहीं खाना लेकिन मैं बस बैठ जाती हूँ यहाँ पे, मैं आपका इंतजार करती हूँ। तो ये तो आप देखें, अंदाजा करें कि ये घराना कौन सा था जिसकी बात यहां पे हो रही है। बुयूत नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बात हो रही, घरों की, जो जितनी भी बीवियों के घर थे उनकी बात हो रही, जहां पे आना हर बंदा बरकत का बायस समझता था, हर बंदा आपसे मोहब्बत करता था, हर बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत चाहता था, आपके साथ बैठना चाहता था। फिर भी उनको मना किया गया कि ये ऐसी चीज नहीं है, आप उनको तकलीफ ना तो देखें, अगर इस तरह से लोग आएंगे उनके घर बैठे ही रहेंगे, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाकी जो आपकी जिंदगी थी, मसरूफ जिंदगी थी, और हर हर वक्त आपका कैलकुलेटेड था, आपकी जिंदगी कोई फारिग जाया करने के लिए नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और काम कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सबको एटिकेट सिखाए गए कि अपनी वजह से दूसरे को दुख ना दो, बगैर बताए बगैर इजाजत के किसी के भी घर नहीं जाना, ना खाने के वक्त का इंतजार करना है, ना खाने के टाइम पे पहुंचना है, ताकि आप लोगों के दिल आपस में मिले रहें। फिर उसके बाद जब आपको खाने के लिए बुलाया गया है, होस्ट आपको सर्व कर दे, आप खाना खा लें, तो उसके बाद होस्ट को अपनी वजह से तकलीफ ना दें लंबे आवर्स तक बैठ के, ना ही पहले से जाके उनको तकलीफ दें। अच्छा, अगर इसमें तकलीफ नहीं दी जा सकती तो ये तकलीफ देना सही है कि जब किसी के घर जाएं तो आपके बच्चे चीजें उनकी तोड़ रहे हैं, उनके कारपेट पे कोल्ड ड्रिंक गिरा रहे हैं, उनके घर में एक शोर हंगामा किया हुआ, अजियत दे रहे हैं सबको, लेकिन आप जो खामोश बैठे हैं, क्योंकि अब ये मेजबान का ही काम है कि वो बेबी सिटिंग भी करे मेरे बच्चों की, वो मुझे सर्व भी करे और मैं बच्चों से भी फारिग होके बैठ जाऊं। मैं तो रिलैक्स करने आई, मैं गपशप करने आई, मैं अब बच्चों को देखने थोड़ी आई। बच्चों को भी खुला छोड़ दिया, वो जो मर्जी करते, फिर जब जाते हैं तो पीछे से लोगों का नुकसान किया होता है, उनके बाथरूमों को बुरी तरह यूज किया होता है, कैसे कि किस किस तरह, आप अंदाजा करें कि मेहमान अजियत का बायस बनते हैं मेजबान के लिए, जिसने आपको मोहब्बत से बुलाया होता है, क्या उसके बाद उसको नुकसान देने का सबब बनना चाहिए मेहमान को कि वो आइंदा के लिए तौबा कर ले के अब नहीं बुलाना, या वहां पे बैठ के ऐसे ओछे मजाक करना, दूसरों की फीलिंग्स हर्ट करना, जिसके अंदर ऐसी चीजें हों कि दूसरा तकलीफ महसूस करे, दूसरों को टीज करना, ये चीजें करना, इनसे भी दूसरों को तकलीफ पहुंचती। जैसे मैंने आपको बताया कि इस आयत की निचोड़ को समझे, आप ये ना सोचें सिर्फ कि ये बारी काम तो मैं नहीं करती इसलिए नहीं, असल बात यहाँ पे ये है कि मेरी जात से ना किसी को तकलीफ पहुंचे। जब इस किस्म के मजाक किए जाते हैं, लोगों की फीलिंग्स का ही ख्याल नहीं किया जाता, और एक बंदे को लेकर निशाना बनाया जाता है, सारे गैंग अप हो जाते हैं और उसके ऊपर जो बातें करना शुरू करते हैं, और या फिर ताने और तशने शुरू करते हैं, या फिर उसके बाद उस घर की जाके बुराइयां लोगों में करने लगते हैं जिस घर से दावत खा के आए हैं, उनकी तो ये चीज ऐसी थी और वो चीज इतनी घटिया थी और वो चीज इतनी गंदी थी और वो चीज ऐसी थी और उन्होंने तो ऐसा किया, ये क्या अजियत देना नहीं है? ये सब अजियत देने की बातें हैं। तो ये आदाब हमने सीखने सोशल लाइफ के। अल्लाहु अकबर। अब ये देखें, दूसरे को यहां पे, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। इन्ना ज़ालिकुम काना यूज़ इन नबी, ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देती हैं। यानी उस वाके से सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियत हो रही थी, कि देखें किसी वक्त किसी के आराम का वक्त होता है, किसी की इबादत का वक्त होता है, किसी, अब जो मेहमान जाके बैठ जाए और उसके बाद चाहे वो रहने वाले क्यों ना मेहमान हो, अच्छा रहने वाले मेहमानों का भी सुन ले जो कि स्टे ओवर करने के लिए आते हैं, तो याद रखिए, चाहे आप, हम तो कुरान सीख रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कम अज कम दूसरों को, तो जिनको नहीं समझ नहीं पता वो तो अलग बात है, हम कम अज कम ये बात याद रखें, 3 दिन के बाद मेहमान नवाजी खत्म है, फिर तो आप ऐसे ही हैं जैसे घर के फर्द होते हैं, फिर ये नहीं है कि बस लेटे रहें और लेट के उठे मुझे यहीं पे सर्व करें, मुझे चाय मेरे बिस्तर में आके दी जाए और मेरे, मैं बस मेहमान बन के बैठी रहूं सेट होके सोफे के ऊपर और घर के अफराद काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जी मेहमान हूं, अब आप तो आए छुट्टियां गुजारने के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, अब 10-12 दिन आप मेहमान ही बने रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अब वो घर वाला क्या है, वो काम भी करे, खाना भी पकाए, आपको टाइम भी दे, आपको शॉपिंग भी कराए, आपको सैर भी कराए, ये फेयर नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 3 दिन की मेहमान नवाजी होती है, उसके बाद नहीं कोई होती, उसके बाद सदका है, वो जो कर रहे हैं उनकी तरफ से एक नेकी है, ठीक है। यहां तक हमें बताए गए हैं हमारे दीन ने एटिकेट्स। अब हम क्या करते हैं कि जब पहले तो हम इतने दिन के लिए किसी के मेहमान बन जाते कि उल्टा उनके ऊपर जहमत बन गए, 15 दिन 20 दिन के लिए चले गए किसी के घर, जी हम तो यहाँ पे सैर करने आए। माँ बाप के घर जाना अलग बात है, वहां पे भी, लेकिन 3 दिन के बाद ये नहीं करना चाहिए कि अब मेरी भाभियां काम करें, वो मुझे सर्व करें, वो मेरे आगे लाके ट्रे रखें तो फिर ही मैं खाऊंगी, और अगर किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया तो फिर हम मुंह बना के आ जाए, आप लोगों ने तो मेरा ख्याल ही नहीं किया। तो 3 दिन के बाद तो ये चीज है ही नहीं है कि आप को इस तरह से सर्व किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये होता है कि अब हमारे पास बैठे रहे और हमें फुल टाइम दे, अब आप अपने सारे काम छोड़ दें क्योंकि हमने जो एहसान कर दिया कि हम आपके घर आ गए, अब आप कोई और काम नहीं कर सकते, बस सारा टाइम आप हमें ही एंटरटेन करते रहे, ये भी सही नहीं है। 3 दिन के लिए तो ठीक है, उसके बाद नहीं कि वो अपने सारे काम छोड़ दे और बस आपके साथ ही लगा रहे, उसने तो अपनी जिंदगी सारी खत्म कर दी। उस अब आप 15 दिन के लिए किसी के घर गए, उसकी तो 15 दिन की सारी एक्टिविटीज खत्म है, तो वो आपको ही टाइम देता रहे, ये भी दूसरे को अजियत देना है। उसके 100 काम होंगे, उसकी 100 चीजें होंगी, उसकी 100 अपॉइंटमेंट्स होंगी, लेकिन अब आपका चूंकि वेकेशन का टाइम है तो अब सबको सब काम छोड़ के बस आपकी सर्विस में लग जाना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। इसके बाद फिर क्या होता है, क्या होता है जब मेहमान भी गिले शिकवे लेके चले जाते, नहीं हमें नहीं अच्छी तरह उन्होंने देखा, और मेजबान जो है वो बेचारा भी एक सूली पर लटका रहता है कि खुश होके ये जाए यहां से, कितनी ये गलत बातें। तो ये सच सब चीजों को हमें देखना है कि जब हम ये एक असूल को याद रखेंगे ना कि हमारी जात से किसी को अजियत ना हो, तो फिर हमें ये सब बातें आसानी से समझ आ जाएंगी कि हमें कैसे रवैये रखने। अब यहां पर देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया ये बात नबी को अजियत देती है, तो उसके बाद फरमाया फयस्तही मिनकुम, तो वो आप लोगों से हया करते हैं, वो कोई आगे से बात नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया की वजह से, इतनी आप में हया थी कि ये नहीं उनको कहा कि चलो चलो अपने घर जाओ, काम करो अपने, उठो यहां से, ये क्या तुम लोग फारिग बैठे हुए, हमारे जैसे कोई हो तो इसी तरह की बातें कह के दूसरे को भगा दे, और इसमें हम बड़ी दलेरी समझते हैं, देखा मुंह पे मैंने कह दिया था। आपने नोट एक बात करें, सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ये फरमाया कि आपको इतनी हया करने की क्या जरूरत, उनको आपको चाहिए कि उनको कहें कि यहां से जाए, इसलिए कि हया होना जो है ना कभी काबिल मुजम्मत नहीं है, हया हमेशा अच्छी चीज है, याद रखें ये बात। और ये भी हया ही होती है कि इंसान मुंह फटो के लोगों के मुंह के ऊपर बातें ना मारे, ये भी हया होती है, समझ आई बात। हया सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैंने ये कपड़े पहन लिए, मैंने अबाया स्कार्फ लगा लिया, मैं बड़ी हया वाली हो गई, हया बात में भी हया होती है, आपके एटीट्यूड में भी हया होती है कि इंसान के अंदर ये मुरव्वत हो। और हम जब दूसरे को मुंह फट होके मुंह पे चीजें दे मारते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं मैं तो हक बात कहती हूँ, भाई मैं तो सच्ची बात कहती हूँ, ये बड़ी अच्छी हक बात, तो हक बात तो ये भी थी। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे जो फारिग हो तुम यहां से जाओ, ये कोई बात नहीं होती, इसका मतलब हया की कमी है। बाज लोग दूसरों को कहते हैं तुम क्या, तुमने ये जवाब देना था, तुमने ऐसे उसको कहना था, लेकिन ये फिर क्या होता है, हया की कमी। हया अच्छी चीज है अगर किसी के अंदर है और वो नहीं दूसरे को इस तरह की बातें कहता। हम मशवरे देते हैं, तुम तो बोलती नहीं हो, तुम तो कुछ कहती नहीं हो, तुमसे लोग फायदा उठा जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है अगर नहीं वो कहते, अच्छी बात है वो कि आगे से वो इस तरह की मुंह फट नहीं है। और बाज लोग इतने हया वाले होते हैं, उनको तकलीफ भी पहुंच रही होती है तब भी वो बेचारे सबर करते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है हया की वजह से, जैसे यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकलीफ पहुंच रही है कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उठे भी हैं उनके सामने नहीं वो उठ रहे। कहीं हम तो नहीं ऐसा करते कि घर वाले बेचारे आवाज आर हो रहे हैं, जमाइयां ले रहे हैं हमारे सामने, नींद उनको इतनी आ रही है, उनको आपकी बातें भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हम कहते नहीं आज तो हमने बस उठना ही नहीं है यहां से। अल्लाह अकबर। तो नबी जो है, ये इस बात को नोट करें कि नबी हया करते हैं तुमसे, और ये हया हमारे अंदर भी होनी चाहिए। मत इस तरह की बेबाकी के साथ बात करें कि बिल्कुल कोई हया नहीं हो और दूसरे को हर चीज बस हमने ऐसे, और इसमें हम अपनी दलेरी ना समझे, अपनी बहादुरी ना समझे, और हम इसको ये ना समझे कि मैं बड़ी सच बोलती हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, लेकिन अल्लाह जो है ना हक कहने से नहीं शर्माता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो लोगों को सिखाना है ना, अल्लाह ने तो सिखाना है लोगों को कि ये दीन जो है ये आखिरी दीन है, इसके बाद कोई और दीन नहीं, कोई और कलाम नहीं उतरना। तो अल्लाह ताला ने लोगों की तरबियत करनी है, वो जानता है कि लोग एक दूसरे से इसकी वजह से तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने ये बात करनी। वो तो शर्म के मारे नहीं करे क्योंकि उनके ऊपर तो गुजर रही है, ये कोई देखें शरीयत का मामला नहीं था। शरीयत के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं कहा कि मैं जो हयात ये तो मैं नहीं शरीयत के मामला बताऊंगा, बल्कि ये आपकी अपनी जात पे था ना, तो आपको चाहे तकलीफ भी हो रही थी लेकिन सह रहे थे, लेकिन फिर दूसरे बंदे को, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसलिए अगर आप देखें भी ऐसा कि किसी को किसी के रवैये की वजह से ऐसी अजियत पहुंच रही है, तो कोई अकल वाला पास बैठा वो ही अकल दे दे कि भाई इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, उनके हस्बैंड घर आ गए हैं, उनको इस वक्त हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या हमें इतनी देर नहीं बैठना चाहिए, ओके चाय पे चाय बन रही है बैठे में, अभी एक फिर दूसरा खाना आ रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा भी खाने का टाइम हो गया, लेकिन हमारे हमारी बातें नहीं खत्म हो रही। तो इस तरह से नहीं है, इस तरह से ताल्लुकात खराब होंगे, इस तरह से हम दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये दूसरा कह सकता है, वो चाहे हया में ना कहे, ठीक है। फिर व इजा सअलतुमुहुन्ना, अब ये सहाबा कराम से कहा जा रहा है कि जब तुम सवाल करो उनसे, किन से, उम्महातुल मोमिनीन से, मतान किसी चीज का, यानी आप कोई चीज लेने के लिए उनके घर गए हैं, उनके साथ कोई मसला पूछने के लिए गए हैं, कोई ऐसी बात करने के लिए गए हैं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे नहीं है मौजूद, तो क्या करो, फस अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, तो उनसे सवाल पूछो, सवाल करो या मांगो कोई चीज पर्दे के पीछे से। अब यहाँ पे भी देख लें अगेन ये बात है कि अगर आवाज का पर्दा होता तो फिर यहाँ पे उनको उम्महातुल मोमिनीन को कहा जाता कि आप तो उनसे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वो आवाज सुनेंगे, और आवाज का भी पर्दा होता, बल्कि कहा गया पर्दे के पीछे से बात करो। हम पर्दे का जरूरी नहीं मतलब कि कोई चादर ही तानी हुई तो वो ही पर्दा होगा कोई, बल्कि दरवाजे के पीछे से, कोई किसी ओट से, दीवार के पीछे से बात कर सकते हैं, अपने पूरे जो यानी हिजाब और उसके साथ जिस तरह से किसी गैर महरम के साथ की जाती है उस तरह से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जब कभी जरूरत की इस तरह की बात है हो सकती है। अब यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है, एक बात को समझ लें कि औरत अब कहे कि नहीं अच्छा ये तो कहा गया इस तरह, तो अब मैं स्टेज पे चढ़ के एक तकरीर शुरू कर दूं और सारे मर्द बैठे हैं, मैं अब उनको एड्रेस कर रही हूँ, मैं इनको दर्स दे रही हूँ, मैं इनको, ये भी नहीं मतलब है, वो भी वराए हिजाब ही होगा, ठीक है। तो जब तुम उनसे सवाल करो किसी चीज का भी, तो फिर उसको पर्दे के पीछे से करना होगा, बवक्ते जरूरत। कैसा राबता होगा, यानी फेस टू फेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आमने सामने खड़े हों, ऐसा नहीं होगा कि यानी आप किसी के साथ जैसे बिल्कुल उसके चेहरे पे नजर पड़ रही हो, उस तरह से नहीं होगा, बल्कि पर्दे के पीछे से होगा। अब देखें इसमें हमें यहाँ पे ये एटिकेट्स पता चलते हैं कि जब किसी गैर महरम के साथ बात करनी है या उसके साथ कोई मामला करना है, तो सिर्फ ये नहीं है कि बाल कवर करने हैं, बल्कि औरत का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका ये सब कुछ उसके हिजाब, उसके उसके मुताबिक होना चाहिए। किस तरह से बात हो, किस तरह, किस तरीके के साथ, किस लहजे में, ये सब चीज़ें हमें बता दी गई हैं। अब यहाँ पे कौन सा पर्दा मुराद है, ये पर्दे के पीछे से क्या है, ये घर का पर्दा मुराद है, घर में किस तरह से आप, जब आपके घर में कोई आएगा तो कैसे उसके साथ बात होगी। इसीलिए इस आयत का नाम आयते हिजाब है। इस मौके पे हिजाब के अहकामात आए थे ना, जब मैंने आपको बताया कि जैनब के घर में लोग बैठे हुए थे और उसके बाद वो गए और उसके बाद ही आयत उतरी। और ये सूरह नूर से पहले की आयत है, इनके बाद फिर सूरह नूर नाजिल हुई थी। तो अब ये हुक्म आ गया पाक तरीन औरतों के लिए कि ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुम्हारे दिलों की पाकी के लिए भी और उनके दिलों की पाकी के लिए भी, यानी तुम्हारे कौन से अजवाज मुतहरात के और उनके कौन से सहाबा कराम के। तो जब फेस टू फेस बात हो, चेहरे पे नजर पड़े, तो हो सकता है किसी के दिल में कोई ख्याल आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए। शैतान तो हर एक के साथ लगा हुआ ना, तो ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकी के लिए ये पहले से ऐसे अहकाम दिए गए कि ऐसी कोई बात की नौबत ही ना आए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह तुम्हारे दिलों को पाक करना चाहता है। हालांकि देखें, ये उम्महातुल मोमिनीन की बात है, जिनके दिल तो पहले से ही पाक है, उनसे ज्यादा पाक औरतें कौन थी। तो फिर आम औरतों के लिए क्या होना चाहिए, आम औरतों के लिए क्या ये नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं नहीं जी, हमारा तो दिल पाक है, इसलिए हमें तो कोई ना पर्दे की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, क्योंकि हमारे दिल पाक हैं। तो क्या हमारे दिल उम्महातुल मोमिनीन से भी ज्यादा पाक हैं? उनको तो ये अहकाम दिए गए, हम क्या उनसे भी आगे बढ़ के हैं? और फिर उनके दिलों के लिए भी, उनके दिल किनके दिल है? सहाबा कराम के। और आज के आदमी जितने भी हैं वो सहाबा कराम से भी ज्यादा पाक दिलों के मालिक हैं। हम क्या किस किस की हम गारंटी ले सकते हैं कि जितनी जगहों पे हम निकलते हैं जाते हैं सब लोगों के दिल पाक साफ हैं? लोग कहते हैं ना पर्दा तो दिलों का होता है, आप क्या ये पर्दा करते हैं, वो तो दिल का होता है पर्दा। अब यहां पे तो दिल का पर्दा करके उम्मातुल मोमिनीन सबके सामने आ जाए कि उनके पास नहीं दिल का पर्दा, फिर तो इस हुक्म की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने यहां पे बता दिया बाहर जब निकलना तब तो पर्दा है ही, जब आपके घर में भी कोई आए तो फिर यानी आप उनसे कैसे बात सवाल करेंगे, बातचीत कैसे होगी पर्दे के पीछे से। आप जाए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आना जाना, लोगों का कोई मसला पूछना है, कोई कुछ है, कोई मामला है, वो तो कोई ना कोई तो आता रहेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि कभी कोई आए ही नहीं, जहां पे भी लोग इकट्ठे रहते हैं वहां पे एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो बातचीत रहती है, कभी लेना है कुछ, कभी देना है, कभी कुछ होगा, तो तब कैसे आपने मामलात करने हैं? देखिए आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा ना तो दिल पाक रहेंगे, ठीक है। जब भी कभी ऐसा मौका हो तो फिर उस वक्त इन चीजों से अव्वल तो पीछे से बात करें, अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल, आमने सामने आना पड़ेगा ही, तो फिर भी अपने यानी हाल हुलिए और उस तरह से ही रहना है जैसे कि जो पर्दे के मुताबिक हो, दिल की पाकी के लिए। और औरतें अक्सर जो है ना ये सोचती हैं कि असल तो मर्दों के दिल ही खराब होते हैं, हमारे तो दिल बिल्कुल कभी खराब होते ही नहीं, हमारे दिल में तो कभी कोई ख्याल आता ही नहीं है, हम तो इतने पारसा हैं। ये नहीं है, यहाँ पे देखें औरतों के लिए भी कहा गया, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं कहा गया। तो हमें क्या पता चलता है यहां से कि ऐसे ही हम किसी से भी बातचीत नहीं कर सकते कोई हमारे दरवाजे पर आ जाए तो। फिर हमें यहां से और क्या पता चला, मर्द औरतों की ऐसी मिक्स्ड गैदरिंग्स, ये सही नहीं कि आपस में बैठे में मिलजुल के गपशप हो रही है और इस तरह, ये सही नहीं है। और जब बेपर्दा होंगे तो दिलों की पाकीजगी नहीं रहेगी फिर। अब उसके बाद मुझे बताएं बेबाक बातें करना, हंसी मजाक करना, या फोन या ऐसे उनके साथ बातें करना, ये क्या सही है फिर दिल की पाकी के लिए? और बाज दफा तो बाज जगहों पे ऐसा होता है कि मतलब बाज लोग ऐसे समझते हैं कि हम तो जैसे इनके घर के मतलब करीबी ही हैं, तो इसलिए हमें को क्या फर्क पड़ता है, घर में आ धमकते हैं, जैसे भी औरतें बैठी हैं फौरन सर पे पहुंच जाएंगी, ये दुरुस्त तरीके नहीं है। وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایزا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. یہ ایزا دینا جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ بھی ایک اذیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسی طرح ایک یہ بھی اذیت کی بات تھی کہ بعض منافقین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے تو ہم ان کی بیوی سے حضرت عائشہ سے نکاح کر لیں گے, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت ہے نا کہ آپ کے بعد آپ کی بیوی سے شادی کی جائے, اور تو اس لیے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو. ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور ان کی بیویوں کے ساتھ, ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے کبھی بھی. یعنی جب یہ فرما دیا گیا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں, قرآن نے یہ بتا دیا کہ مائیں ہیں, تو اس وقت پھر یہ کہنا کہ ان کے ساتھ شادی کر لی جائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں, تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ سوچے کہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لے گا, کیونکہ شادی کی وجہ سے تو کہا گیا کہ تمہارے لیے وہ مائیں ہیں, امہات مومنوں کی, سب مومنوں کی مائیں ہیں وہ, تو ان کے ساتھ نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں قرار دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ بات اللہ کے لیے نزدیک بہت بڑی ہے. بہت بڑی کا مطلب کیا, بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی ایسی بات کا ارادہ رکھے, ایسی بات کا سوچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دنیا میں بھی آپ کی ازواج ہیں اور جنت میں بھی وہ آپ کی بیویاں ہوں گی, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا احترام نہ کرنا یا ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح کا سوچنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کی پیاری جو بیوی سب سے زیادہ تھی ان کے اوپر کوئی باتیں کرنا, ان کی کوئی برائیاں کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیا یہ اذیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اوپر باتیں بناتے ہیں, ان سے بغض رکھتے ہیں, ان کو برا کہتے ہیں, تو اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیں پھر کیا ہے ان کے لیے. نہ ہی ہمارے لیے کوئی اس طرح سے کوئی چیز یہ جائز ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کوئی ان کے بارے میں ایسی بات رکھیں, جیسے کہ انہوں نے کیوں جنگ کی تھی, جنگ جمل کیوں ہوئی تھی, پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات دل میں رکھی جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات رکھی جائے کہ آپ نے کیوں اتنی شادیاں کر لیں, آپ نے کیوں ایسا کر دیا, کیا یہ اذیت دینا نہیں ہے؟ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اس آیت نے ہمیں کتنا کچھ سکھا دیا, ہمیں ایٹیکیٹ سکھا دیا, کس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے, کس طرح آپ نے کسی کے گھر میں کھانے کے وقت نہیں جانا, کھانے کا انتظار نہیں کرنا, جب کھانا کھا چکے ہیں تو پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں, وہاں پہ باتوں میں مشغول ہو کے ان کو اذیت نہ دے نبی. اگر اچھا ایک اور بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے دعوت پہ تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے, خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور ہو. بعض لوگ اس کو بھی بہت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہیں کسی کے بلانے پر جاتے, یہ بھی یعنی ان کی بہت بڑی بڑائی کی بات ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو لوگوں سے الگ رہنا پسند کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے فقط یعنی صرف ایک کھر کی دعوت دی جائے تو بھی میں اسے قبول کروں گا, یعنی اتنی سی بھی دعوت پہ مجھے بلایا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں کیا تھا, آپ سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے, آپ سے زیادہ عزت والا کوئی انسان نہیں ہے. اگر وہ یہ کرتے تھے کہ ایک کوئی لونڈی, کوئی यानी गरीब आदमी है, कोई एक खुर की दावत भी कर रहा है, उसके ऊपर भी आप कबूल कर लेते थे दावत को और उसके यहाँ चले जाते थे, तो मैं और आप क्या चीज़ है कि हम बड़ी बहुत बड़ी चीजें हैं जी, हम लोगों में मिक्सअप होना पसंद नहीं करते, आम पब्लिक तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इतनी बड़ी चीजें, या कोई गरीब मुझे बुलाए या कोई ऐसे ही कोई मुझे बुलाए, नहीं नहीं मैं ज्यादा लोगों से क्लोज होना नहीं चाहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो इंसान लोगों से मिलता है, जो मुसलमान लोगों से मिलता है और उनकी अजियत पे सब्र करता है, वो बेहतर है उससे जो लोगों से नहीं मिलता और उनकी अजियत पे सब्र भी नहीं करता। ये बहुत आसान है कि मैं और आपसे क्लूड होके बैठ जाएं, ना हम लोगों से मिलें जुले, लोगों से मिलें जुलेंगे, मिलें जुलेंगे तो क्या होगा, कोई कोई हमें कोई जली कटी बात कह देगा, कोई हमारी कोई बुराई कर देगा, कोई हमें कोई ताना दे देगा, कोई कोई ऐब लगा देगा, कोई हमारा मजाक करेगा, तो इससे बेहतर है किसी से मिलो जुलो ही नहीं, घर में आराम से बैठो, ना किसी से मिलना ना जुलना, ना किसी से बोलना ना चालना, ना किसी के साथ कोई ताल्लुक रखना, बस एक अकेले होके जिंदगी लोनर की जिंदगी गुजारना, तो बड़ा आसान है। चलो ठीक है फिर आप ऐसे रहें, लेकिन आप इस अजर से महरूम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बेहतर फरमाया, जो लोगों से मिलता है, जब मिलेंगे जाहिर अजियत तो होगी, जब मिलेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आपको खुशी की बातें मिले, किसी ने यहाँ पे कुछ आपको कह देना, किसी ने वहां जाएंगे तो कुछ कह देना, लोगों का काम है वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, तो जब आप उसके ऊपर सब्र करेंगे आप बेहतर हैं उससे जो सेक्लूजन में रहता है और कोई सब्र नहीं करता। यहाँ जब आप किसी की दावत कोई आपको देता है उसको कबूल कीजिए, अपने आप को उस वक्त इतना बड़ा ना समझ लें कि मैं इतने हाई रैंक पे हूँ, या मैं कोई टीचर हूँ, या मैं बड़ी आलमा हूँ, या मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं वजीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं फलां हूँ, मैं क्यों इन लोगों में आम लोगों में जाके मैं बैठ जाऊँ, ये नहीं मेरी शान के खिलाफ है, मैं VIP हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा VIP कौन था? अगर सीखना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखा करें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लगता तो ऐसे ही कि बड़ा अच्छा है, चलो ना पब्लिक में मिलेंगे तो ना कोई बातें होंगी, जाहिर है पब्लिक में जाएंगे वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसी वक्त हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ये तरीका नहीं था तो ये जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं देख रही हूँ अपने माशरे में किस तरह होता है, लोग बड़े लोग जो होते हैं वो जरा अपने आप को जरा डिस्टेंस पे रखते हैं आम लोगों से, तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, तो ये फिर मेरा तरीका गलत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका गलत नहीं हो सकता, अगर उनका तरीका उस तरह था तो मुझे उस पर चलना है। ठीक है, तो फिर हमें पता चला कि अजियत देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, आपकी अजवाज के ऊपर कोई बात करना, उनसे बोझ रखना, या वो उन लोगों ने तो निकाह का कहा था, आज के वक्त में ये चीजें तो नहीं हो सकती, लेकिन आज के वक्त में बोग्स है जो दिलों के अंदर रखे हैं, आगे भी इस पे बात होगी। इन तुबदू शैअन औ तुखफू हो, याद रखो तुम जाहिर करो कोई चीज को या तुम छुपाओ इसको, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम्हारे दिल के अंदर कोई कीने हैं, कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसे ख्यालात हैं तुम्हारे नेगेटिव किस्म के उनकी उनकी जात के बारे में, तुम उनको जाहिर करो या छुपाओ। या वो जो मुनाफिकीन थे उन्होंने दिलों में सोचा हुआ था कि ये फौत हो जाए तो हम इनकी बीवी से शादी कर लेंगे, अल्लाह को ये भी पता है, फइन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, अल्लाह ताला हर चीज के बारे में इल्म रखता है। फिर उम्महात को बताया गया कि अब पहले जब बता दिया गया कि सबसे पर्दे के पीछे से बात करनी है आपने, तो अब उनके जो भाई थे, बाप थे, भतीजे भांजे थे, वो आ गए कि आप क्या हमारे साथ भी मतलब ये पर्दे के पीछे से बात करें, तो फिर ये आयत आई कि ला जुनाह अलैहिन्न फी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न, इनके ऊपर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है इनके ऊपर कि अपने बापों के मामले में, अपने बेटों के मामले में, अपने भाइयों के मामले में, वाला अबनाए अखवानिहिन्न और ना अपने भाइयों के बेटों के मामले में, वाला अबनाए अखवातिहिन्न अपनी बहन बहनों के बेटों, यानी पहले भतीजे की बात है या भांजे की, वाला निसाई हिन्ना और ना अपनी औरतों के मामले में, वाला मा मलकत अयमानुहुन्ना और ना ही अपनी लौंडियों के मामले में, कोई हर्ज नहीं है कि वो बगैर पर्दे के भी उनसे बातचीत करें, मामलात करें, उनके साथ बैठें, इन रिश्तों के मामले में हिजाब के बगैर भी उनके सामने आ सकती हैं, यानी ये जो हिजाब का मामला था वो सिर्फ गैर महरमों से हैं। फिर एक लिस्ट दे दी गई जिनको घरों में एंट्री की इजाज़त है, जिनके सामने वो ओपनली आ सकती हैं, बगैर पर्दे के भी आ सकती हैं। ये फिर इस मामले में उनके ऊपर कोई हरज नहीं है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अभी ये मुझे बताएं, ये इतनी लिस्ट देने की क्या ज़रूरत थी अगर सबके सामने एक जैसे ही आ जाना? जैसे बाप के सामने आना है वैसे सहेली के बाप के सामने भी आ जाना, जैसे भाई के सामने आना है वैसे कजन के सामने भी आ जाना। अगर ये चीजें सबके साथ एक जैसा ही, कि औरत घर में बैठी हुई है जिस लिबास में, उसने चाबी पकड़ी और उसी तरह जाके गाड़ी में बैठ गई, उसी तरह बाजार चली गई, तो मुझे बताएं कि इन लिस्टों की क्या जरूरत थी? खुद कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करके, जो लोग कहते हैं ना जी कहाँ है कुरान में आयतें, कहाँ है हिजाब की, कहाँ है कुरान के अंदर लिखा हुआ कि बालों को कवर करो, जी समझ नहीं आती। हम हर मामले में कितने सियाने हैं, लेकिन इस मामलों में देखो कि कैसे शैतान ने इंसान को पागल बनाया हुआ। इतनी लंबी लिस्ट हमने चौथे पारे के एंड में देखी थी, आखिरी आयत चौथे पारे की देखी थी, इतनी लंबी लिस्ट के हम इनकी ये औरतें, ये मर्द के लिए महरम औरतें, औरतों को भी बता दिया गया ये रिश्ते तुम्हारे लिए महरम रिश्ते हैं। आप मुझे बताएं इनकी क्या जरूरत है फिर? इनको क्यों कहा गया कि उनके साथ तो हिजाब में से बात करोगी, और ये हैं जिनके लिए हिजाब की नहीं है जरूरत? ये आयतों की जरूरत नहीं थी फिर? बाप भी वैसे तो वो जो कजन है वो भी तो भाई ही है तुम्हारा, कोई बात नहीं, इसके साथ तो बचपन में तुम खेली हो, तो फिर उसकी भी क्या जरूरत है? कोई किसी की भी नहीं। फिर इसी तरह हस्बैंड के सामने भी वैसे ही होना और देवर के सामने भी वैसे ही होना, ये भी तो भाई ही है, और तो और देवर को गोद में लाके बिठा देना, भाई है तो फिर क्या हो गया? देवर है तुम्हारा, ये तो मतलब देवर भाभी का तो एक अलग ही वो होता है मामला रिश्ता। ये नहीं है लाजुना हाले ही ना, इनके सामने सिर्फ नहीं है कोई गुनाह, इसका अंदर बाकियों के सामने तो हरज है ना, ये है महरम, इनके सामने बिला रोक टोक आ सकते हैं, इनके साथ हिजाब के पीछे से बात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। इनके अलावा कोई ऐसे नहीं है कि जिनके साथ ओपनली बगैर हिजाब के मामला किया जा सके। तो इनमें कौन कौन आ गए? आबाई हिन्ना, बाप, बाप में दादा भी, नाना भी, चचा भी, मामू भी सब हो गए। अबनाई हिन्ना, बेटे, सुतेले बेटे भी हैं इसमें, सके बेटे भी हैं, पोते भी, नवासे भी, उनकी औलादें भी, भाई, हकीकी भाई भी हैं इसके अंदर, सोतेले भाई भी हैं इसमें, रजाई भाई भी हैं इसमें, ठीक है? सोतेला भाई चाहे बाप की तरफ से है, चाहे माँ की तरफ से है, ठीक है? एक किसी ने सवाल किया था कि मेरा सोतेला भाई है, उसके साथ मैं हज पे जा सकती हूँ, तो वो महरम ही है, भाई है वो, चाहे बाप की तरफ से माँ की तरफ से हो। लेकिन वो नहीं भाई होगा कि जो सोतेले बाप का किसी और बीवी से हो, यानी माँ ने एक आदमी से शादी की और वो आदमी अपने साथ अपना एक बेटा पिछली बीवी से लेकर आया हो, तो वो भाई नहीं होगा इसका, इसके साथ इसका निकाह हो सकता है। वला अबनाई इख्वानी हिन्ना, ना तुम्हारे भतीजों के सामने आने के मामले में, ना तुम्हारे भांजों के सामने आने के मामले में। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि इन सारे रिलेशनशिप्स के सामने सी थ्रू कपड़े पहन के आया जाए, या आधे आधे आस्तीने पहन के, या स्कर्ट्स पहन के आ जाया जाए कि आधा जिस्म नंगा है और वैसे ही चले फिर रहे हैं, ये नहीं इसका मतलब है। या इतने टाइट कपड़े पहन लिए हैं कि अब वो सारा जिस्म इसके अंदर से जाहिर हो रहा है, मालूम हो रहा है क्या शेप है क्या। ये देखें, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। इसी वजह से आज इन महरम रिश्तों के बारे में भी बातें सुनने में मिलती हैं कि ऐसा मामला हो गया या ऐसा मामला हो गया। बाप से बच्ची की इज्जत महफूज नहीं, बाज़ दफ़ा उससे नहीं रहती। वजह यही है कि जब हम हदें तोड़ देते हैं ना और इतनी क्रॉस कर देते हैं, वैसे ही बाहर जा रही है, वैसे ही बाप के सामने है, वैसे ही सबके सामने, और वो ऐसा हुलिया है कि वो बाप मां बाप भाई के सामने भी नहीं उसमें आ सकते, इतने टाइट कपड़े। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से इसमें भी केयर करनी चाहिए, औरत की इज्जत बहुत नाजुक है। फिर जब ऐसे केस बन जाते हैं कि इज्जत उतारने वाले अपने ही बाज दफा महरम रिश्ते होते हैं, तो फिर इंसान कहता है कि ये बाद में जो पछताता है, तो उससे बेहतर है कि पहले केयरफुल होना चाहिए। और ये माओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों को इस तरह की बात सिखाएं कि वो जवान भाइयों के सामने, बाप के सामने भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें एहतियात करें, इस उस तरह के हुलियों में ना आए। अच्छा, बाई हिन्ना में फिर सुसर भी आ जाते हैं। और फिर वाला निसाई हिन्ना, निसा जो जिनकी शराफत और चाल चलन का पता हो कि ये शरीफ औरतें हैं, भरोसे की औरतें हैं, जिनमें कोई गैर मुस्लिम भी हो सकती है, क्योंकि यहूदी औरतें भी, मुशरिका औरतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के पास आया करती थी अपनी कोई बातें करने के लिए, अपने कोई मसलों के लिए। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ मुसलमान औरतें ही शामिल हैं जो यानी जो मोमिन है। वजह वो क्या बयान करते हैं, वो वजह ये बयान करते हैं, यानी मैं हैरान होती हूँ जब ये पढ़ती भी हूँ कि अल्लाहु अकबर, जो वजह बयान की गई है वो तो खुद नहीं औरतों को आज पता, कि वो ये वजह बयान करते हैं उलमा कि जो मुसलमान जब औरत होगी तो उसको पता होगा कि मैंने अपनी मुसलमान बहन के बारे में कोई बात जाके किसी गैर मत के सामने नहीं करनी। वो उलमा लिखते हैं भी गैर मुस्लिम औरतों को क्या पता है, उनके सामने तो ये चीजें यानी मैटर नहीं करती कि भाई इज्जत और जो मुसलमान औरत की है उनको इसका पता ही नहीं है, वो जाके कोई बात अपने भाई के सामने, शोहर के सामने, उसके सामने कर देंगी। तो उनको ये नहीं पता कि नजरों को झुकाना क्या होता है, पर्दा क्या होता है, ये चीज क्या होती है, तो इसलिए उनके सामने अपने आप को ना खोलो। लेकिन मुसलमान औरत को तो पता है ना कि उसका दीन में इन चीजों को मना किया गया, तो वो इन बातों का ख्याल रखेगी, वो बाहर बात नहीं करेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो उलमा ने ये बात रखी है, तो आज तो मुसलमान औरतों को ही नहीं पता। बाज औरतें यानी ऐसा नहीं कि कोई बुरी हैं औरतें वो, लेकिन चूंकि दीन से बिल्कुल ना वाकिफ हैं, तो वो किसी पार्टी में जाती हैं, किसी जगह जाती हैं, पर्दे हिजाब वाली किसी औरत को देखती हैं, तो घर जाके अपने बेटों के सामने, अपने शौहर के सामने, अपने किसी और घर के मर्द के सामने कहती हैं, वो तो इतनी हसीन है, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो ऐसी थी, उसकी आंखें वो ऐसी थी, वो तो बड़ा बड़ी ऐसी है। आप ये तो नाजायज है, तो किसी हदीस में है, ये किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो इस तरह से बयान करे किसी औरत को, दूसरे को लगे कि उसको नजर आ रही है, वो बेचारी अपने पर्दे करती फिरती है, और ये जाके घर में उसकी बातें बयान कर रही है कि वो हसीन ही बहुत है, और उसके बाल ऐसे हैं, तो उसकी आंखें ऐसी हैं, तो वो ऐसी है। अगर मुसलमान औरत को ही नहीं पता, तो फिर कौन सी है निसाए हिन्ना, या तो फिर वो ही होंगी जिनको इतनी अकल हो, इतना पता हो, इतनी समझ हो। अल्लाह अकबर। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि कभी भी हम किसी औरत की हुसन की, उसकी शक्लो सूरत की, उसके हाल हुलिया की, उसके फिगर की, ऐसी कोई भी बात अपने घर के मर्दों को, वो आपके महरम हो सकते हैं, वो आपके बेटे हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, वो आपके महरम हो सकते हैं, वो उसके महरम तो नहीं, उसकी कोई ऐसी बात घर में आके ना बयान की जाए। उस औरत ने आपको पर भरोसा करके अपना अबाया, अपने उसका आप खोल दिया आपके सामने, लेकिन आपने उसका पर्दा खोल दिया बाहर जाके, उसको नंगा कर दिया बाहर जाके, अगर उसकी बातें बयान कर दी तो। वाला मा मलकत अईमानुहुन्ना, और ना उनके मामले में जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाने आते, यानी लौंडियों वगैरह के मामले में कि वो नौकर चाकर हैं इस तरह। लेकिन ये याद रखिए, ये लौंडियों के मामले में हो सकता है, लेकिन जो आज के नौकर हैं, ड्राइवर हैं, आपके कुक आपने रखा हुआ घर के अंदर, आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ घर के, उसका मामला नहीं है कि अब औरतें घर में घूम रही हैं बगैर दुपट्टे के, बगैर उसके साथ घर का नौकर है वो भी वैसे ही वहीं पे घूम रहा है, घर के अंदर सफाई हो रही है, किचन में जा रही आ रही, वहां पे कुक अपना खाने पका रहा है, तो अब ये चूंकि हमारा नौकर है इसलिए हम इनके इससे थोड़ी पर्दा करेंगे, ये भी एक दीन से नावाकफियत है। वो तकीन अल्लाह, और तो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क्योंकि तकवा ही होगा तो फिर ये एहसास होगा कि हमने इन मामलात में लीनियंसी नहीं करनी। अल्लाह से डरो जिनके बारे में तुम्हें बता दिया गया है कि ये हैं जो तुम्हारे महरम हैं, इनके सामने तुम सिवाय यानी बगैर उसके जा सकती हो पर्दे के, तो अब एडवांटेज उठा के ये ना करो कि बस हारे को इसमें ही डाल दी, जब इनकी इजाजत मिल गई तो चलो, ये भी नहीं, ये भी हमारे अंकल ही हैं। अंकल क्या है, वो अंकल इसलिए क्योंकि वो ये हमारे अब्बू के दोस्त हैं तो अंकल हैं, और ये हमारे से इतने बड़े हैं इसलिए ये अंकल ही हैं, तो चलो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे नहीं है। अल्लाहु अकबर, बल्कि फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह से डरो, यानी इसमें ये भी हमें मैसेज मिलता है कि इन अहकामात को इग्नोर ना करो, डरो अल्लाह से, इसमें चेंज मत करो, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, इनके अलावा लोगों के साथ बेहिजाब मत हो। बाज दफा औरत को इस मामले में इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, बाज लोग हकीर देखते हैं कि ये क्या मुल्लानी सी है, ये ऐसे है, बिलिटल करते हैं उसको, उसको ताने देते हैं, बाज लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, लो तुम क्या, तुम्हारे तो ये तुम्हारा भाई है, इससे अब तुम पर्दा करोगे अपने भाई से, और ये सारी जिंदगी तुम्हें बचपन से हमने खिलाया हुआ, अब तुम हमसे पर्दा करोगे, अब हमारे सामने तुम ऐसे, अब बाज दफा ऐसे होता है कोई आता है तो आप जल्दी से अपनी चादर लेने के लिए भागते हैं, लो अब तुम चादर लेने के लिए भाग रही, इसके सामने पर्दे की क्या जरूरत है। तो फरमाया अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, इस आयत के एंड में इस बात को नोट करें कि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर गवाह है, खुद देख रहा है, वो खुद गवाह है इस चीज का, देख रहा है कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कौन औरत क्या करती है इसके जवाब में, वो खुद देख रहा है, कि कोई टीचर के लिए से डरने की जरूरत नहीं, किसी बड़े भाई बाप उनसे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद देख रहा है, अल्लाह को पता है कि कौन औरत क्या क्या बातें सुनती है, फिर भी अल्लाह की खातिर वो जमी हुई है, अल्लाह की खातिर वो इस इन अहकामात को मानती है, और कौन है जो इग्नोर करती है, जो सुनती भी है दूसरे कान से निकाल देती है, कौन है जिसको परवाह ही नहीं है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, और कौन है जो कानितात है, फरमा बरदार है, अल्लाह को सब पता है, वो खुद जानता है। तो इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह की हदूद को तोड़ के जाएगा कहाँ, एक दिन तो मरना है, हिसाब देना है, आज लोग कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, कितना ही मजाक कर लें, कयामत के दिन लोगों को नहीं हमने हिसाब देना, आज लोग हमें हकीर देख लें, लोग हमें बेवकूफ समझें, लोग हमें एक्सट्रीमिस्ट समझें, लोग हमें पागल कहें, कुछ भी कहें, इनको नहीं फेस करना, हमने अल्लाह को फेस करना है। फरिश्ते भी हैरान होते हैं कि ये कैसा इंसान है कि देखो इतने से मजे की खातिर ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता, इतने से दिनों की अपनी लज्जत के लिए ये इतना गाफिल हुआ हुआ, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अल्लाह की हदूद को तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, याद रखो अल्लाह की नजरों में हो तुम। बाज दफा हम माए बच्चों को कहती ना, तुम ये कर रहे हो ना, देख रही हूं मैं तुम्हें, इसके अंदर कितनी बड़ी धमकी होती है अगर समझा जाए तो, कितनी बड़ी धमकी होती है कि मैं देख रही हूं तुम्हें। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह गवाह है, वो खुद देख रहा है, उसके फरिश्ते वो उनकी गवाहियां और गवाहियां तो छोड़े, अल्लाह खुद गवाह है, क्या ये बात काफी नहीं है हमारे लिए कि वो खुद देख रहा है हमें कौन क्या कर रही है, कौन सुनती भी है और फिर इग्नोर करती जाती, और किसको किसका डर ज्यादा है, अल्लाह का या किसी और का। लोगों की बातों का और उसकी नजरों का और उसके कहने का और उसके तानों का और उसका। अल्लाह अकबर। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा इस आयत में वाजे हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा मकाम है। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी, दरूद भेजते, सलात भेजते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि अल्लाह और मलाइका किस पे सलात भेजते हैं? मोमिनों पर। वो कितना बड़ा मोमिनों के लिए ऑनर था। और अब ये बात आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। और अल्लाह ताला का सलात भेजना क्या है और फरिश्तों का सलात भेजना क्या? मैंने आपको सलात के डिफरेंट माने बताए थे, एक ही माना सबके लिए नहीं है, क्योंकि जाहिर है वैसे सलात का माना असल में माना होता है रहमत। रहमत, अल्लाह ताला जब सलात भेजता है तो वो रहमत नाजिल फरमाता है अपने बंदे के ऊपर। फरिश्ते सलात भेजते हैं तो वो रहमत मांगते हैं, वो खुद तो नहीं ना नाजिल कर सकते, तो वो रहमत मांगते हैं अल्लाह ताला से। और जब अगर ईमान वालों को कहा जाएगा कि वो सलात भेजते हैं तो इसका मतलब उनका भी होगा कि वो भी रहमत की दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज के काबिल नहीं है कि वो किसी के ऊपर रहमत नाजिल करें, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है ना। तो इसलिए इसके सारे माने एक नहीं हम बना लेंगे, बल्कि डिफरेंट माने होंगे। जब अल्लाह ताला सलात भेजेगा तो इसका मतलब ये भी नहीं है, एक बात याद रखें कि नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा है, नहीं। जब हम ये सोचते ना कि पता नहीं अल्लाह दरूद पढ़ता है, दरूद पढ़ता है वो तो दरूद के अंदर, तो अकल वालों दरूद में तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हम तो खुद कहते हैं अल्लाह सलात भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला थोड़ी दरूद पढ़, दरूद का मतलब फिर क्या है कि अल्लाह अपने नबी के ऊपर रहमतें भेजता है। अल्लाह ताला का दुरूद उसका रहमत नाजिल करना है। अल्लाह ताला का दुरूद ये है कि वो मदह करता है, तारीफ करता है अपने बंदे की, अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करता है अपने बंदे के, ये अल्लाह का दुरूद भेजना है। अल्लाह ताला शान बुलंद करता है, अल्लाह ताला मोहब्बत से मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला आलमे बाला में फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है, सब के सामने आपकी तारीफ करता है, सब फरिश्तों के सामने, ये है अल्लाह ताला का रहमत भेजना। तो सब ये चीज बाकियों की तरफ तो नहीं मंसूब हो सकती ना। तो फरिश्ते क्या करते हैं, वो दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं, वो दुआए रहमत करते हैं। और अल्लाह ताला ने इसके बाद ये हुक्म दिया है ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम क्या करो, तुम दरूद भेजो और सलाम भेजो। सलाम भेजना तुम्हारा ये काम है कि अब इतने एहसानात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर हैं कि अब हम उन एहसानात का जवाब तो नहीं कोई दे सकते, हम उनका एहसान उतार ही नहीं सकते कभी, तो अब हमारा काम क्या है कि हम उनके ऊपर दरूद भेजें और सलाम भेजें। ये है दो काम जो हमें बताए गए कि आपने करने के हैं, दो कैसे, एक सलात है और एक है सलाम। जब आदमी कोई सलात भेजता है तो वो यानी दुआ करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जैसे कि एक हदीस में आता है कि तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ और तुम मेरी कब्र को ईद ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है खा तुम कहीं हो। हमारा जो हम दरूद भेजते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है। और अल्लाहु अकबर, जो सलाम है वो भी किस तरह से हम جب ہم درود بھیجتے ہیں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سلام تو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا کیا ہے, کیونکہ وہ اس وقت کیسے سلام بھیجتے تھے جب وہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو سلام کرتے تھے, تو سلام کرنا تو ہمیں پتہ ہے, درود ہم صلات کیسے پڑھیں آپ کے اوپر, صلات کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا اس سیدنا کا لفظ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی, اس میں سیدنا کا نہیں ہے, محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے تھے, خود سکھائے تھے کہ اس طرح سے مجھ پر درود بھیجو, ٹھیک ہے؟ تو اور اس کو اتنا زیادہ یعنی اس کے اوپر اجر ہے, اتنا زیادہ اس کا انسان کو فائدہ ہے کہ ایک دفعہ صرف وہ درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 درجے بلند فرماتا ہے, اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے. اور جتنا زیادہ آپ درود بھیجیں گے, جتنا زیادہ کسی کا درود ہوگا قیامت کے دن, وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا, اتنا اس کی فضیلت ہے. اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت قاب بن عبی بن قاب جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ بڑی کثرت سے درود بھیجتا ہوں, اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے نکالوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. تو میں نے عرض کیا 1/4 صحیح, 1/4. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا کیا آدھا وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا میرے لیے اچھا ہے, آپ کے تو درجے پہلے سے بلند ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری محبت کی نشانی ہے کہ ہم کتنا زیادہ درود بھیجتے ہیں, یہ ہماری طرف سے, ورنہ یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری دعاؤں سے, یہ دعا ہی ہے نا, ایک جو ہم صلات بھیجتے ہیں یہ ایک دعا ہے, یہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے. تو اب ہماری دعا سے نہیں ان کا ہونا, مگر یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کے احسان کو ہم مانتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں, اس لیے ہم ان کے لیے بہت بہت دعا کرتے ہیں. ورنہ ان کے جو مقامات ہیں وہ ہماری دعاؤں سے بلند نہیں, ان کے تو مقامات پہلے ہی بلند ہیں اللہ کے ہاں. تو پھر وہ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر 2/3 آپ پہ درود بھیجا کروں اپنی عبادت میں سے, یعنی جتنا بھی میرا دعا کا وقت ہوتا ہے اس میں سے 2/3 کر لوں. تو فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. یعنی اگر آپ کا کوئی دکھ اور غم ہے نا, کوئی پریشانی ہے, آپ کو کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں, یہ دکھوں کے لیے غموں کے لیے یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے, 10 رحمتیں تو ویسے ہی اس کی وجہ سے ایک دفعہ پڑھنے سے ہی نازل ہوتی ہیں, تو جب کثرت سے پڑھیں گے تو کتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور پھر گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے گی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے, جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ سلام اس کے اوپر بھیجتا ہے. تو یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے, بہت لمبا سجدہ کیا, حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی, کہیں فوت تو نہیں ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ کا سر اٹھا اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے. میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا, جو آپ پہ سلام بھیجے گا میں بھی اس پہ سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ, یہ مسند احمد کی روایت ہے, سبحان اللہ. اور جس نے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام درود پڑھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. یہ بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, طبرانی نے اس چیز کو روایت کیا, یعنی روز کا معمول صبح شام کا تو 10-10 دفعہ کا تو ضروری بنا لیں. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ ہے نا کہ اول آخر آپ درود شریف پڑھیں پھر دعا مانگیں تو قبول ہوگی وہ دعا ایسی جو اس طرح سے مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور بشارت دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کرے میں اس کو 10 دفعہ سلام کہوں گا. یہ نسائی نے روایت کی ہے. تو اسی طرح 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں. تو اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس بندے کے اوپر فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اب جو کم پڑھنا چاہے کم پڑھے، جو زیادہ پڑھنا چاہے زیادہ پڑھ لے، اتنی فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. اسی لیے دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ جو بھی ہماری پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہے، تو ہم درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کریں گے، ویسے بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہیں بھیجا تو آپ پتہ ہے اس کے بارے میں ایک سخت وعید بھی ہے کہ ہلاک ہو گیا، وہ دبا ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ بھیجا. تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا، اور اس کو بخیل فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، کنجوس ہے وہ، پھر درود نہ اگر بھیجتا تو وہ بڑا بخیل ہے، یہ بخیل ترین انسان ہے. اور یہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی یہ چیز کہ کسی مجلس میں انسان گیا ہے اور وہاں پہ جا کے اس نے درود نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ مجلس بھی باعث حسرت ہوگی. چاہے انسان نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا بھی جائے، لیکن اس کو حسرت ہوتی رہے گی کہ میں اس مجلس میں گیا تھا، میں نے کیوں نہیں درود بھیجا تھا وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا، اور جس دعا میں سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی اتنی تک یہ بات کہی گئی ہے. اور تو اب آپ درود کا تو آپ کو پتا چل گیا صلو علیہ، اور وسلم و تسلیمہ کیسے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ سلام کیسے بھیجیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اس میں سلام بھی بھیج رہے ہیں. صلی اللہ جب آپ نے کہا تو صلات بھیجی، اور وسلم آپ نے سلام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورا اگر آپ کہیں گے تو اس میں آپ ساتھ سلام بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا دوسری بات، جس وقت ہم تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، تو یہ آپ نے تشہد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا. اور یہ تشہد جو اتحیات ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھائی ہے، یہ ہم خود نہیں بنا کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی بھی ہے. پھر اسی طرح جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم سلام کہتے ہیں ان کو، تو وہ بھی ایک سلام ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کوئی جانے لگے اچھا میرا وہاں پہ جا کے سلام کہہ دینا، یہ کہیں سے بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ خود وہاں پہ جائیں تو اس وقت آپ جا کے یہ سلام کہہ سکتے ہیں. اچھا بعض لوگوں نے کیا اس کے بعد شروع کیا کہ قرآن میں ہے نا صلات اور سلام بھیجنا، تو اذان سے پہلے شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر جا کے اذان دیتے ہیں. یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جو ایجاد کی ہوئی ہے. ایسے کہیں پہ بھی صحابہ نے اذانیں دیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اذان سے پہلے اس طرح سے صلاۃ والسلام کے الفاظ کہے ہوں. اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ جس وقت کے آپ درود بھیجیں تو ایک تو یہ درود ہے جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسنون درود موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے ہیں. یہ تو درود ابراہیمی کہلاتا ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف درود ہمیں سکھائے ہیں. وہی درود پڑھنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو. ایسے درود خود ہی سے بنا کے اور اس کے بعد ان کو کہنا کہ یہ بھی درود ہے، یہ درود لکھی ہے، درود پتہ نہیں کیا ہے، درود تاج ہے، درود فلاں ہے، وہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلمات تھے، یعنی آپ کی یہ ایک خصوصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بتائی کہ جوامع الکلمات یعنی کمپریہنسو سپیچ کرنے والے تھے. आपके अल्फाज कॉम्प्रिहेंसिव होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से बढ़ के आपके कोई और अल्फाज हैं जो लोग लिख सकते हैं? अब कोई बैठ के लिखना शुरू कर दे मैं ये दरूद पढ़, कोई नज़म हो सकती है कोई आपकी तारीफ में, तो मैं दरूद ना उसको कहो, क्योंकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अल्फाज किसी के नहीं हो सकते। तो एक जैसे बहुत सारे दरूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, उनमें मसलन एक दरूद है जो मुख्तसर है, इसलिए मैं वो आपको बताना चाहती हूँ, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, ये भी एक दरूद है। क्या तो ये मुख्तसर सा है, इसलिए इसकी तस्बीह करना भी आसान है, ठीक है। तो जब बहुत सारे और भी हैं, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद, ये भी दरूद आता है। फिर इस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम, ये भी बुखारी के अंदर ये दरूद है। इसी तरह और भी कुछ दरूद हैं जो ऑथेंटिक हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है मगर जो ऑथेंटिक हैं, तो उनमें से कोई दरूद लेकर और फिर आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे एक और दरूद आता है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियाती कमा सल्लैता अला इब्राहिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियाती कमा बारकता अला इब्राहिम अला आली इब्राहिम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद, ये भी एक दरूद है। तो इस तरह से हमें ये दरूद मिलते हैं, खास तौर पे जिस जिन मौके के ऊपर दरूद पढ़ने का खास तौर पे हुक्म दिया गया है, उनमें जैसे मसलन जुमे का दिन है और जुमे में भी जो खास तौर पे यानी जो दोपहर का वक्त जो जुमे का टाइम है उस वक्त और जुमे की रात से ही आप शुरू कर सकते हैं दरूद कसरत से पढ़ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुमे वाले दिन दरूद के लिए आप खास करें। इसी तरह जब ईद की नमाज होती है तो उस दिन भी आप दरूद भेज के फिर दुआ मांग कर फिर उसके बाद आप कोई भी जो दुआ मांगनी होती है वो कर सकते हैं। हज़रत इब्ने मसूद हज़रत अबू मूसा और हज़रत हुज़ैफ़ा के पास आकर वलीद बिन उक़बा कहते हैं कि ईद का दिन है, बताओ तकबीरों की क्या कैफियत है? अब्दुल्ला ने फरमाया, तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह की हम्द करके अपने नबी पर दरूद भेजकर दुआ मांग, फिर तकबीर कह यही कर, फिर तकबीर कह फिर यही कर, फिर तकबीर कह फिर यही कर, इस तरह से बताई गई। फिर दुआ के खात्मे पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि दुआ जो है ना आसमान और ज़मीन के दरम्यान मुअल्लक रहती है, यहाँ तक कि दरूद पढ़ा जाए तब चढ़ती है ऊपर, तो ये भी एक जगह पे आता है तिर्मिज़ी में। इसलिए दरूद अव्वल आखिर पढ़ के फिर उसके बाद दुआ मांगी जाए। फिर अजान सुन के दरूद पढ़ना चाहिए, अजान सुनने के बाद जो आप दुआ करते हैं अजान की उसके बाद फिर दरूद पढ़ें। मस्जिद में जब आप दाखिल हो रहे हैं और मस्जिद से आप निकल रहे हो तब भी दरूद पढ़ना चाहिए। इसी तरह नमाज के आप अत्तहियात के बाद फिर दरूद पढ़ना चाहिए। और अव्वल जो तशहुद होता है उसमें वाजिब नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लें तो मुस्तहब है। यानी जब आप एक चार रकत पढ़ रहे होते हैं तो बीच में भी एक तशहुद के लिए बैठते हैं ना, तो आप उसमें भी अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ के फिर आप खड़े हो सकते हैं, वो मुस्तहब है, ठीक है। और अगर आपने एंड में तो पढ़ा ही नहीं तो वो नमाज ही सही नहीं है, फिर वो पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह जनाजे की नमाज में भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ये कई मौके हैं जहाँ पे दरूद भेजा जाता है। और इस तरह से किसी और के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना या अलैहि सलाम कहना जायज़ नहीं है सिवाय अंबिया के, किसी और को जैसे हज़रत अली अलैहि सलाम या हज़रत हसन हुसैन अलैहि सलाम, इसलिए कि ये ख़ास अंबिया के लिए ये अल्फाज हैं, इनसे पता चलता है अंबिया हैं ये। अब उनके जो ख़ास अल्फाज वो किसी और को दे दिए जाएं और ये सोच के कि वो भी कोई नबी के बराबर हैं या कुछ हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है फिर। तो ये कुछ फजीलतें थी जो दरूद की थी। इन्नल्लज़ीना युदून अल्लाह व रसूलहु, बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, اذیت اس زمانے میں تو منافقین کے ہاتھوں اذیت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر تہمت لگانے کی بات ہو گئی، کبھی کسی اور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے بن گئے. اگر مطلب سچے مومن جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانے نچھاور کرتے تھے، لیکن یہ جو تھے یہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہتے تھے، کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کس طرح آپ کو اذیت پہنچائی جائے. دیکھیں نا، پھر بھی سبحان اللہ، آفرین ہے اس نبی کے اوپر کہ وہ پھر بھی ان لوگوں کو کبھی ایسے نہیں ہم نے دیکھا کہ ان کو برا بھلا کر کے، ان کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا، ان کو تانے دیے گئے ہوں، ان کو یعنی سب کے سامنے ایک ذلیل کیا گیا ہو کہ تم ایسے ہو، تم تو منافق ہو، تمہارا تو پتہ چل گیا تم نے تو ایسے کیا. ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ جنگ عذاب میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا. تو طرح طرح سے یہ اذیتیں دیتے تھے رسول کو. اچھا، لیکن یہاں پہ آیا اللہ کو بھی اذیت دیتے. جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی تو شان بلند، اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ یہاں پہ پھر کیا مطلب ہے اذیت دینے کا؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کا ایک مطلب ہے زمانے کو گالی دینا. سمجھ آئی؟ زمانے کو گالی دینا. بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں، میں ہی دن اور رات کا تغیر و تبدل کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، یہ تو بڑا برا زمانہ ہے، نعوذ باللہ. یہ بات کہنا غلط ہے، اس لیے کہ زمانے کو الٹ پھیر کرنا اللہ کا کام ہے. تو اللہ کو برا کہہ رہے ہو، تو اللہ کے افعال کو برا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے یہ کیا، کیونکہ آپ زمانے کو جب برا کہتے ہو تو زمانے کو بنانے والا اور یہ کرنے والا کون ہے؟ استغفر اللہ. اسی طرح جو انسان شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک ایذا ہے کہ وہ جیسے فرمایا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے جس نے ایسا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ بھی اللہ کو ایزا دینی ہی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، یعنی میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. دیکھو، اللہ کو بیچ میں رکھ کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا کہ صحابہ کی برائیاں شروع کر دیں، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھنا. یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے صحابہ سے محبت کریں، ان کے اوپر عیب نہ نکالیں، ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں انہوں نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے ہم عیب نکالنا شروع کر دیں. ہمیں عادتیں ہوتی ہیں عام لوگوں کے عیب نکالنے کی، تو ان کے اوپر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کوئی یہ حکمران یا یہ وزیر یہ صدر وغیرہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی خامیاں ٹٹولتے ہیں اسی طرح ان کے بھی شروع کر دیں. یہ نہیں، ان سے محبت رکھنا میری محبت کی وجہ سے، ان سے بغض اور بیر رکھنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا. ان کو جس نے ایزا دی اور جس نے اور اللہ کو ایزا دی، یقین مانو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اس لیے ان کو یہ باتیں، ہمارے جیسے لوگوں کو، ہم بہت نیچے ہیں، ان کے مقام بہت اوپر ہیں، ہمیں نہیں زیب دیتا کہ ہم ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں یا بات کریں. تو اس طرح سے یہ چیزیں کہنا، یہ ایزا پہنچانا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. انہوں نے جسمانی ایزائیں تو کافروں نے دی، ذہنی ایزائیں ان منافقوں نے دی، اور انہوں نے کافروں نے تو ذہنی بھی ٹارچر دیا، لیکن منافقین جو ذہنی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، کبھی کوئی باتیں کہہ کے، کبھی کوئی کہہ کے، اور آج پھر وہی چیزیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں میں ہی کوئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی بدعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیزیں نہیں آپ نے بتائی، میں کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہو؟ کیا تمہارے پاس سنت میں سے ساری چیزیں پوری ہو گئیں؟ تم نے سب عمل کر لیے جو آپ بدعتوں کے پیچھے پڑ گئے؟ بدعت کو فروغ دینا سنت کو ختم کرنا ہے. جب آپ بدعتوں کو رواج دیتے ہو نا تو سنت ختم ہو جاتی ہے. तो कभी इस तरह से करके मतलब उनको एक अजियत देते हैं। तो ये चीजें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दोगे तो वो तो अल्लाह को अजियत देना, और अल्लाह के हलाल हराम की परवाह किए बगैर नाफरमानियों पे जमे रहना भी अजियत देता है अल्लाह को। और लानहुमुल्लाहु फि दुनिया वल आखिरा, सुन लें कि ऐसे इंसान के लिए लानत है दुनिया और आखिरत में, फिर उसके बाद भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर अपनी जुबानें खोले तो फिर वो अपना अंजाम देख ले कि जिसके ऊपर लानत हो गई है फिर क्या उसका अंजाम होगा। दुनिया में भी लानत है और आखरत में भी। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हम तो मानते ही नहीं हदीस को, हम तो मानते ही नहीं ये चीज कोई है, बस हम कुरान को मानेंगे। तो लानत है ऐसे बंदे के ऊपर जो हदीस को ना माने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करते। वाअद्दा लहुम अज़ाब मुहीना, देखिए कुरान क्या कह रहा है, कहते हैं रसूल उनको मानते होंगे लेकिन उनकी हदीस तो नहीं हम मानते। ऐसे लोगों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। आज उन्होंने अगर अपनी जुबानें खोल ली अल्लाह और उसके रसूल को ईजा दी इस तरह से करके, तो क्या उनके लिए आखरत में इज्जतें होंगी उनके लिए? देखिये जैसा एक्शन है ना सजा भी वैसी है उनके लिए, फिर सजा भी वो है कि अजाब भी बेइज्जत करने वाला रुसवा करने वाला। और अगली भी बात सुन लें, सिर्फ यहीं तक बात नहीं खत्म होती, आगे पता चलता है कि सुभान अल्लाह अल्लाह के नजदीक मोमिन मर्द और मोमिन औरत की इज्जत कितनी बड़ी चीज है और अल्लाह को कितने प्यारे ईमान वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह तआला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ून अल-मोमिनीन वल-मोमिनात, वो जो ईजा देते हैं मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को भी गैर मकतसब, बगैर उनके किसी कसूर के। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि वो अल्लाह पे ईमान रखने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनको अजियत देते। अब चाहे ये कलेक्टिवली हो कि मतलब कल के जमाने में तो कैसे अजियत दी जाती थी कि जो इस्लाम ले आता था उसको टॉर्चर किया जाता था, उसको घरों से निकाल देते थे, उसको ऐसे कर। आज भी कोई कम नहीं है, अजियत आज भी दी जाती है, आज भी ऐसे किया जाता है कि जो मुसलमान है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है उनको घर जला दिए जाते हैं, उनको घर से दर बदर कर दिया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। वो दुनिया में आज रेफ्यूजीज बन के घूम रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। और मैंने आपको बताया मोमिन के अंदर मुस्लिम और मोमिन एक ही बात है, यानी वो अलग अलग नहीं है। जब एक लफ्ज आएगा तो इसमें दोनों होंगे, जिसके दिल में ईमान है, जिसने कलमा पढ़ लिया अल्लाह का, वो अल्लाह के नजदीक इतनी बड़ी वैल्यू रखता है कि बगैर उसके किसी कसूर के उसने उसको अज़ियत दी। फका देहता मलू बोहतानन, इसने बहुत बड़ा बोहतान उठाया अपने ऊपर, वह इस्म मुबीना और गुनाह खुला। बोहतान कैसे है कि जो किसी ने कुछ किया ही नहीं है उसको उसके ऊपर इल्जाम लगा देना। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों ने तो सलात भेजी है मोमिनों पर, जो हमने पिछले सबक में पढ़ा, जो इनको अजियत देगा। इनके कोई कसूर भी नहीं है, क्या उन्होंने कसूर किया है? उनके क्या कोई उनकी कोई वजह हो मसलन है कि किसी ने मिसाल के तौर पे किसी ने वो कत्ल किया, चलो वो एक किसास उसे लिया गया, किसी ने जिना किया उसके ऊपर उसको सजा दी, वो तो एक कसूर है, उसको अजियत मिली लेकिन उसको इसकी सजा मिल रही है उसके, लेकिन बगैर कसूर के। देखिये उस वक्त के तो थे, आज तक ये टॉर्चर जारी है कि जब इंसानियत अपने आप को कहती कि हम इतनी 21st century में और हम बहुत आगे निकल गए तरक्की में, उस वक्त में भी कोई अगर कलमा पढ़ने वाला है उसकी वजह से उसको अजियत दी जा रही है। तो ये कौमों के लेवल पे भी एक बात है, इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे भी। इस आयत को अगर हम समझ लेना तो हमें डर लगना चाहिए किसी के ऊपर बोहतान लगाते हुए, किसी को ताना देते हुए, किसी को बेइज्जत करते हुए, किसी को बदनाम करते हुए, किसी को सताना, उसको अजियत देना, उसको मजलिसों में बैठ के बेइज्जत करना। सोचें अल्लाह ताला ने फरमाया जी उसने अजियत दी मोमिन मर्द को या मोमिन औरत को, जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे तोहमत लगा दी थी, अजियत दी ना, उनको भी अजियत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजियत दी। तो जो अजियत देते हैं इस तरह लोग बैठ के सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब उसके ऊपर मैंने कोई बात कर दी, उसके ऊपर कोई उसको बदनाम कर दिया, उसके ऊपर कोई बोहतान लगा दिया, तोहमत लगा दी, तो मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे पकड़ेगा, जुबान ही है ना, हमने जुबान चलानी होती, किसी के भी लिए कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी बदनाम कर दिया मजलिसों में बैठ के, और अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि हम जिसको चाहे बेइज्जत कर दें, हमारे आगे कोई बोल के तो देखे। तो जो सताते हैं ना, हर्ट करते हैं आप, जब अजियत क्या है, हर्ट करना, हर्ट करते हैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उनके किसी कसूर के बगैर, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ये गुनाह है, मामूली बात नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए इंसान, ये ना हो कि नमाजें पढ़े, रोजे रखे और उसके बाद इन कामों में शामिल हो जाए, अजियत देने में लोगों को, और इतना बड़ा गुनाह अपने सर उठा रहा हो, और बोहतान बांधने का बताएं सजा क्या होती है, ये ना हो कि वो इसमें मुलव्वस हो जाए। अल्लाह ताला है ऐसे कामों से हमें महफूज रखे। जिस बंदे की जिंदगी प्रोडक्टिव होगी ना, उसमें कोई मकसद होगा, फोकस्ड लाइफ जो गुजार रहा होगा, उसके पास नहीं वक्त होगा अजियतें देने का, इसको ये कह दिया, उसको वो कर दिया, इधर फोन करके ऐसे कह दिया, उसको टेक्स्ट करके वो कह दिया, ये चीजों का उसके पास टाइम नहीं होगा। और जिसकी जिंदगी फारिग होगी तो फिर उसको यही काम मिलेंगे, और क्या वो काम करेगा। अल्लाह ताला इन चीजों से महफूज हमें रखे, अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कसरत से दरूद पढ़ने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। आप सब भी एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ताकि ये जो हमें हुक्म मिला हम फौरी तौर पर इसके ऊपर एक दफ़ा तो अमल कर लें। तिलावत सुने।
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا